समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
एक साहस भरा योग्य काम करने की इच्छा करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी का आशीर्वाद लेने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, देश के बड़े से बड़े नेता की भी नहीं। एक योग्य काम अपना आशीर्वाद अपने साथ ही लेकर चलता है, ये कथन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। जी हाँ, जीवन के कठिन से कठिन समय में साहस ही एक ऐसी भावना है जो हमें मुश्किलों में भी डटे रहना सिखाती है। साहस एक ऐसा विचार है जो मन में आते ही पराजय को पीछे छोड़ते हुए हमें विजय के विचारों की ओर अग्रसर कर देता है। जीवन से जुड़े किसी भी सत्य या फिर गलती को स्वीकार करने के लिए साहस की जरूरत होती है। साहस के बगैर कोई बड़ा नहीं बनता। इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इसी साहस की बदौलत पूरी दुनिया में नाम कमाया है। और जब साहस किसी योग्य काम से जुड़ा हो, किसी बड़े प्रयोजन से जुड़ा हो, तो उसके मायने ही बदल जाते हैं। तो आइए आज इस सुबह एक साहस भरा कदम उठाने का निर्णय लें, एक साहस भरा विचार अपने मन में पनपने दें। इसी के साथ ही आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में आपके साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन।
Hello Akarshita and welcome along listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring you our ever exciting daily news magazine program Aaj Savere. So let me tell you a little bit about the program. We'll equip you with the latest national, international and metro city updates and we'll tell you what sets this day, that is 5th of August, apart. Well, we'll find out soon enough, so make sure to stick around till the end. All of this and more coming up in the next half an hour. So let's begin with the headlines first, shall we?
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिकॉर्ड गैस उत्पादन होने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी ये प्रतिक्रिया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पोस्ट पर आई है, जिसमें कहा गया था कि भारत ने रिकॉर्ड गैस उत्पादन किया। केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 में गैस उत्पादन 45.3 बीसीएम होने का अनुमान है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि गैस उत्पादन में ये रिकॉर्ड इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
लोकसभा इज शेड्यूल्ड टू टेक अप फर्दर डिस्कशन टुडे ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर 2024-25, द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। In Rajya Sabha, the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024 is scheduled to be introduced. The House is also slated to take up discussion on the working of Agriculture Ministry.
नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नेपाल के जलमार्ग और रेलवे को विकसित करने का आह्वान किया है। भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय के तहत सड़क विभाग की वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक में श्री ओली ने सिविल सेवकों को भारतीय सीमा के पास हनुमान नगर से त्रिवेणी और देवघाट तथा स्टीमर सेवाओं के संचालन के लिए एक योजना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 1970 से नेपाल में स्टीमर सेवाओं की अनुमति देने वाले कानून के अस्तित्व के बावजूद ऐसे बुनियादी ढांचे का उपयोग नहीं किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जलमार्ग परिवहन माल और लोगों की आवाजाही के सुगम माध्यम पर जोर देते हुए श्री ओली ने अधिकारियों को देश में जल्द ही स्टीमर संचालित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने नेपाल की रेल सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया और मौजूदा जनकपुर कुर्था रेलवे लाइन में दो रेलवे लाइनों के जोड़ने का आह्वान किया। श्री ओली ने नेपाल में एक पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन के विकास का भी प्रस्ताव रखा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे नेपाल के रास्ते गुवाहाटी से दिल्ली और सिलीगुड़ी से हरिद्वार तक यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को भी फायदा होगा।
Chief of Defence Staff General Anil Chauhan will chair an apex-level tri-service financial conference in New Delhi today. The conference is aimed at enhancing cohesion and synergy in financial issues of the armed forces and will see the participation of senior officials from Ministry of Defence, Controller General Defence Accounts, among others. The conference is being coordinated by headquarters of the Integrated Defence Staff. It is aligned with the objective set for the ongoing drive on integration and jointness in the armed forces. During the conference, discussions are scheduled on aspects of understanding the perspectives of various stakeholders in defence, finance and finding solutions to challenges faced in defence procurements. The financial advisor, Defence Services and Director General Acquisitions will also give specific talks on the roles and actions undertaken by their organisations in expeditious procurement.
केंद्र सरकार ने पेरिस 2024 ओलंपिक का जश्न मनाने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी करने का ऐलान किया है। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय युवा मामले और खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संचार मंत्रालय ने कहा कि डाक टिकट जारी करना ओलंपिक और उसके एथलीटों के लिए भारत के उत्साह और समर्थन का प्रतीक होगा। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका उद्देश्य देशभर के युवा एथलीटों और खेल प्रेमियों को प्रेरित करना है।
Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has announced the procurement of all crops in the state at minimum support price MSP. Addressing BJP's Vijay Shankhnad rally in Kurukshetra, Mr. Saini said the state government is currently procuring 14 crops at MSP. He said the state government has also decided to waive off outstanding canal water irrigation charges known as Abiana worth 133 crore rupees. Chief Minister said BJP government has also decided to discontinue the Abiana system, which will benefit farmers to the tune of 54 crore rupees per annum. Mr. Saini also announced the payment of pending compensation worth 137 crore rupees within a week to farmers who suffered crop damage because of natural calamity in Rohtak, Nuh, Fatehabad and Sirsa before 2023. This amount will be transferred to the accounts of the farmers. He said now farmers will be allowed to buy a three-star motor from anywhere in the country for new tube well connections. At present, only 10 companies of three-star motors are registered in the state. Chief Minister said 40,000 posts will be filled in the government sector.
श्रीलंका के साथ तीन एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में कल भारत को हार का सामना करना पड़ा। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में कल रात खेले गए मैच में मेजबान श्रीलंका ने भारत को 32 रन से हराया। 241 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की टीम 42 ओवर और दो गेंदों में 208 रन पर आउट हो गई। कप्तान रोहित शर्मा ने 44 गेंदों में 64 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाजों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। श्रीलंका के जेफरी वांडरसे ने 6 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 240 रन बनाए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही श्रीलंका श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया है। पहला मैच टाई पर समाप्त हुआ था। और आज अब सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरें, आइए जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरें शगुन से।
राइट, वील बिगिन विद चेन्नई। Metro Rail has sought help from an external expert to draw plans to develop space in and around some phase 2 stations for commercial use. Recently, CMRL awarded a contract to a firm to prepare a detailed project report to develop property at the entry exit points of 15 metro stations on corridor 3 and 5 of phase 2. CMRL said it plans to prepare many DPRs to study feasibility to increase its non-fare box revenue. More news from Chennai. The Chennai Corporation has taken action and the encroached portions of Elliot's Beach were cleared. 50 stalls were within 20 yards of the shoreline. The operation encompassed 30 conservancy workers, 10 road workers, 40 police officers and 10 officials, as well as 3 excavators and 3 lorries for the first time in years. The stalls that did not have a valid business permit were removed. Now let's focus on Bengaluru. Union Minister of State for Railways V. Somanna flagged off Bengaluru Kalburgi Vande Bharat Express through video link from Bengaluru yesterday. It will have an additional stoppage at Yadgir. Addressing the gathering on this occasion, the minister said that this is the first Vande Bharat Express for the people of Yadgir. He informed that the indigenously developed train has several world-class features, providing better riding comfort with safety features. He said that all the routes in the state are now doubled and electrification completed up to 90% in the last 10 years. All the unmanned level crossing gates have been eliminated in the state. Now let's turn our attention to Hyderabad. Telangana government will be bearing the expenses for 4 top students chosen by the State Agriculture Department to pursue master's degree in the state. Union Minister for Agriculture T. Nageswar Rao announced that the government will fully fund the education of these students selected by the State Agriculture Department to pursue their master's degree at Auburn University in Alabama. These students completed their degrees from Jaya Shankar Agricultural University and Konda Lakshman Horticulture University. The minister said that the government is committed to supporting the talented and underprivileged students in the state. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. So what are the updates from Mumbai, Delhi and Kolkata?
Ji, to aaiye ab jante hain Delhi ki khabrein. Dakshini Delhi se Bhajpa sansad Ramveer Singh Pithuri ne kal Aya Nagar ilake mein Ambedkar Bhavan ke nirman karya ka shilanyas kiya. इसके अलावा उन्होंने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव मांडी की सड़कों के निर्माण कार्य का भी उद्घाटन किया. दिल्ली नगर निगम ने शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 235 में स्थित न्यू जाफराबाद से वृक्ष गोद लेने का अभियान शुरू किया है. इस अभियान के अंतर्गत वृक्ष गोद लेने वाले नागरिकों के नाम वृक्ष लगाने की तारीख के साथ वृक्ष की सुरक्षा जारी पर अंकित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य राजधानी में सौंदर्यीकरण करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और वायु गुणवत्ता को सुधारना है. वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है. उन्होंने कहा कि इस कमी से दिल्ली के गरीब लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं होने की वजह से अस्पतालों में करोड़ों रुपए की मशीनें बेकार हो रही हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है, लेकिन फिर भी रिक्त स्थानों पर भर्ती नहीं की जा रही है. शिक्षा निदेशालय की समावेशी शिक्षा शाखा ने छठे निगम गुरु द्रोण खेल पुरस्कार 2024 के लिए एक सर्कुलर जारी किया है. इच्छुक शिक्षक 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. पुरस्कार की घोषणा इस महीने की 29 तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन की जाएगी. वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रथम वर्ष स्नातक छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है. कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएं 29 अगस्त से शुरू होंगी और 24 दिसंबर को ये सेमेस्टर समाप्त हो जाएगा. दसवीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का उत्सव मनाने के लिए प्रदर्शनी विरासत राजधानी के हथकरघा हाट में शुरू हो गई है. इस प्रदर्शनी का आयोजन वस्त्र मंत्रालय का राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम कर रहा है. इस वर्ष हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा. इस प्रदर्शनी का उद्देश्य हथकरघा और हस्तशिल्प की परंपरा को और मजबूत करने के साथ ही बुनकरों तथा कारीगरों को बाजार उपलब्ध करवाना है. और आइए अब चलते हैं मुंबई की ओर. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC ने श्रावण मास के दौरान पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक विशेष सेवा शुरू की है. श्रावण में ST के साथ तीर्थयात्रा नामक इस पहल के तहत वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को मामूली शुल्क या मुफ्त में राज्य के पवित्र स्थानों पर जाने का अवसर मिलेगा. MSRCTC ने कहा कि लोग आज से शुरू होने वाले महाराष्ट्र में श्रावण मास की पहली तारीख से इस पहल का लाभ उठा सकते हैं. वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज नवी मुंबई में विशेष जल गुणवत्ता परीक्षण अभियान चलाया गया। मनपा के जलापूर्ति विभाग की ओर से प्रतिदिन 110 पानी के नमूने जांच के लिए लिए जाते हैं। नवी मुंबई मनपा आयुक्त डॉ कैलाश शिंदे ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए मनपा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से 1000 से अधिक पानी के नमूने एकत्र किए गए हैं। नमूनों की रिपोर्ट मिलने के बाद उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए पानी के उपचार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं थाड़े यातायात पुलिस ने गतारी अमावस्या के अवसर पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की जांच के लिए अभियान चलाया और कम से कम 443 लोगों पर जुर्माना लगाया। और आइए अब चलते हैं कोलकाता की ओर। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बाघ संरक्षण क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्य वन रक्षक देबल रॉय ने आकाशवाणी को बताया कि इस उद्देश्य से दक्षिण 24 परगना जिले के रैदिघी मतला और रामगंगा रेंज को बढ़ाया जाएगा। सुंदरबन का क्षेत्र बढ़ने के बाद आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ संरक्षण क्षेत्र के बाद सुंदरबन बाघ संरक्षण क्षेत्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ संरक्षण क्षेत्र बन जाएगा। वर्तमान में सुंदरबन में 101 बाघ हैं और ये भारत में सातवें स्थान पर है। और आइए अब जानते हैं दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है और शगुन देख ही सकते हैं। मौसम आजकल थोड़ा सा जो है खुशनुमा चला है, मतलब थोड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है। और आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। और मुंबई की बात करें तो मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहने का अनुमान है। यहां सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश होने की आशंका है। और वहीं कोलकाता में भी आज आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है।
Well, there is a possibility of rain in, as you have told us, in other states also like Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature is 26 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain. The minimum temperature is 20 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 31 degrees. And now we have our special segment of Paris Olympics 2024. Well, the countdown is on and all eyes are focused on Paris today as Lakshya Sen will aim to add a fourth medal to India's tally as he will take on Malaysia's Zee Jia Li in the bronze medal match of the men's singles in the Paris Olympics today at 6 p.m. IST. We have more from our correspondent.
On a day Indian athletes faced off in a series of important, potentially medal-winning encounters, some emerged victorious, while most others fell by the wayside despite gallant efforts. In hockey, India strode past Great Britain in a quarter-final riding on the heroics of veteran goalkeeper P.R. Srijesh after being reduced to 10 men early. Harmanpreet Singh gave India the lead by converting a penalty corner before Great Britain equalised. Srijesh made some remarkable saves as India dug deep to hold on and then emerged a hero in the tiebreaker. In-form Lakshya Sen had his moments in an epic semi-final against defending champion Victor Axelsen but lost in straight games 22-20, 21-14. Tokyo Olympics bronze medalist Lavlina Borgohain also suffered a deflating defeat in a 75kg quarter-final on the cusp of yet another medal. In athletics, Parul Chaudhary in the 3000m steeplechase and Jasmine Aldrin in long jump disappointed in the qualification rounds. Shooters Vijay V. Sidhu and Anish Bhanwala missed out on the men's 25m rapid-fire pistol final while Maheshwari Chauhan and Raisa Dhillon also bowed out in the women's skeet qualification.
आई.
शुभांकर शर्मा वॉज ऑफ द मेडल प्लेसेज बट सिक्योर्ड इंडियाज बेस्ट फिनिश इन मेन्स गोल्फ सिंस द स्पोर्ट वॉज इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स कमिंग 40th. इन सेलिंग बोथ इंडियंस इन एक्शन नेत्रा कुमानन एंड विष्णु सर्वनन एट मीडलिंग परफॉर्मेंसेज. मीनवाइल इन अदर स्पोर्ट्स द लेजेंडरी नोवाक जोकोविच बीट स्पेनिश सुपरस्टार कार्लोस अल्काराज 7-6, 7-6 टू विन हिज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड एंड कम्प्लीट अ डिजर्व्ड गोल्डन स्लैम. मीनवाइल इन ट्रैक एंड फील्ड इन द मेन्स 100 meter रेस यूएसए's नोआ लाइल्स won the gold in a photo finish with a time of 9.79 seconds. Fan Zhendong of China won the men's table tennis gold and Kim Woo-jin finished on top of the podium in men's individual archery. Today, all eyes will be on the Porte de la Chapelle Arena as Lakshya Sen takes on Zee Jia Lee of Malaysia in the bronze medal playoff. Indian women will play the table tennis pre-quarterfinals while Kiran Pahal in the women's 400-meter heat and Avinash Sable in the men's 3,000-meter steeplechase preliminaries will turn out at Stade de France. India also begins the wrestling campaign today with Nisha Dahiya in the women's 68 kg freestyle event. This is Shaurya Chaudhary reporting from Paris for Akashvani.
और आइए अब जानते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या-क्या हुआ.
Well, we are taking you way back in time. In the year 1864, Italian astronomer Giovanni Donati became the first person to observe the spectrum of a comet. In the year 1912, the first taxi cab service started operating in Tokyo, Japan. In 1914, the first traffic lights in the U.S. were installed in Cleveland, Ohio. The traffic lights featured red and green colored lights, as we know, and made a buzzing sound when the colors were about to change.
और आज के दिन ही 1996 में कुल 24 देशों ने एटलांटा में अपने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत की, जिसमें 11 पूर्व सोवियत गणराज्य पहली बार स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भाग ले रहे थे.
In the year 1991, Leela Seth was sworn in the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court.
और 1999 में आज के दिन ही चीन और ताइवान के बीच तनाव अपने चरम पर था.
In 1999, only Nisha Millet became the first Indian swimmer to receive the International Olympic Committee's Solidarity Scholarship.
और आज के दिन ही 2008 में भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में हिंद महासागर में 5.5 तीव्रता के भूकंप का झटका महसूस किया गया.
In the year 2013, the world's first lab-grown bovine stem cell burger was consumed in London. In the year 2020, the foundation stone for the Ram Mandir, dedicated to Lord Ram, was laid in Ayodhya by Prime Minister Narendra Modi, today only, in August 5.
जी, और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन. तो आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं प्राण कुमार शर्मा को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्हें कार्टूनिस्ट प्राण के नाम से भी जाना जाता है. भारतीय कॉमिक जगत की सबसे सफल और लोकप्रिय कार्टूनिस्ट प्राण ने 1960 से कार्टून बनाने की शुरूआत की. प्राण द्वारा बनाए गए सर्वाधिक लोकप्रिय पात्र शगुन आप चाचा चौधरी सुनाई होगा हमने बचपन में. चाचा चौधरी, साबू, रॉकेट, बिल्लू और श्रीमती जी, हम लोग जो कॉमिक्स पढ़ते थे,
है ना, है ना,
उसमें. और सबसे ज्यादा फेमस जो मूछों वाले थे वो चाचा चौधरी थे.
राइट.
तो अपने श्रोताओं को बता दें कि ये सारे जो कॉमिक्स हमने पढ़े हैं, इन सारे जो कैरेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं, इन सब की डिजाइनिंग या जो कार्टूनिस्ट थे इनके, वो थे प्राण जी. और चाचा चौधरी संभवतः भारत के सबसे लोकप्रिय कार्टून चरित्रों में से एक हैं, जिनके रचयिता प्राण हैं. और एक बार प्राण साहब ने सोचा कि क्यों ना एक भारतीय कॉमिक्स पात्र बनाया जाए, एक बुढ़ा जो अपने तेज दिमाग से चुटकियों में समस्याओं को हल कर दे. और इस तरह चाचा चौधरी ने सफेद कागज पर जन्म लिया. एक जमाने में काफी लोकप्रिय रही पत्रिका लोटपोट के लिए बनाए उनके कई कार्टून पात्र काफी लोकप्रिय हुए. बाद में कार्टूनिस्ट प्राण ने चाचा चौधरी और साबू को केंद्र में रखकर स्वतंत्र कॉमिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की. और आज ही जो है भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदलोई की पुण्यतिथि है. इन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा गया है. इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था. 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें कारावास जाना पड़ा था. और वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के कारण गोपीनाथ बोरदलोई को पुनः सजा हुई. गोपीनाथ ने असम के विकास के लिए अथक प्रयास किए थे. उन्होंने राज्य के औद्योगिकरण पर विशेष बल दिया और गुवाहाटी में कई विश्वविद्यालयों की स्थापना कराई. असम के लिए उन्होंने जो उपयोगी कार्य किए, उनके कारण वहां की जनता उन्हें लोकप्रिय की उपाधि
दिया था और वसुधा असम के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
Well, today we are also remembering Jeffrey Porcaro. He is an American drummer, songwriter and the record producer. He is best known for being the co-founder and drummer of the rock band Toto. He is one of the most recorded session musicians in history, working on hundreds of albums and thousands of sessions. And for you listeners, we have this song, Rosanna, to listen in.
All I want to do when I wake up in the morning is see you live. Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna.
आज प्रसिद्ध अभिनेत्री काजोल का जन्मदिन है। वे अपने अभिनय के बल पर एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। काजोल ने बॉलीवुड में अपने सफर की शुरुआत 1992 में आई फिल्म बेखुदी से की थी। उस वक्त काजोल 16 साल की थी और ऐसे में उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। 1993 में काजोल को शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ फिल्म बाजीगर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और वे कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आई। उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उन्हें बेहद पसंद किया गया और ये 25 साल तक थिएटर में चलने वाली पहली फिल्म बनी थी। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के ये गीत।
जंगल में झींगर की छाए जाए
चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता शर्मो है आके पर्दे गिरा के करनी है हमको खता जिद है अब तो है खुद को मिटाना होना है तुझ में पना
Well, listeners, today we are also remembering Lala Amarnath Bhardwaj, the Indian cricketer, a man of many firsts in Indian cricket. He scored the first ever century for India in Test cricket, and this was his debut Test. He was India's first cricket captain and captained India in their first Test series win against Pakistan. He received the Padma Bhushan in the year 1991 and the first C.K. Naidu Lifetime Achievement Award in 1994. From BCCI. And today it's also the birth anniversary of Neil Armstrong, the first man to set foot on the moon, Akashita. He served as a naval aviator from 1949 to 1952 before joining the National Advisory Committee for Aeronautics and the Lewis Flight Propulsion Laboratory in 1955. Later that year, he transferred to the NACA's High Speed Flight Station in Edwards, California, as an aeronautical research scientist and then as a pilot, a position he held until becoming an astronaut in 1962. He was one of the 9 NASA astronauts in the second class to be chosen.
Yah har ek viram hai, jeevan mahasangram hai. Til til mitunga, par daya ki bheekh main lunga nahi, vardaan mangunga nahi. क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही वरदान मांगूंगा नहीं। ये पंक्तियां हैं हिंदी के शीर्ष कवियों में से एक शिवमंगल सिंह सुमन की। आज उनकी जयंती है। सुमन जी प्रिय अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक भी थे। वे साहित्य को बोझ नहीं मानते थे, अपनी सहजता में गंभीरता को छिपाए रखते थे। वे साहित्य प्रेमियों में ही नहीं अपितु सामान्य लोगों में भी बहुत लोकप्रिय थे। शहर में किसी अज्ञात अजनबी व्यक्ति के लिए रिक्शे वाले को यह बताना काफी था कि उसे सुमन जी के घर जाना है। डॉ शिवमंगल सिंह सुमन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। जब आंख की पट्टी खोली गई तो वे हतप्रभ थे। उनके समक्ष स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा चंद्रशेखर आजाद खड़े थे। आजाद ने उनसे प्रश्न किया था कि क्या ये रिवाल्वर लेकर दिल्ली जा सकते हैं, और सुमन जी ने बेहिचक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें 1999 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा आज सवेरे कार्यक्रम यही समाप्त करने की।
नमस्कार
नमस्कार।